हमारे माध्यम से और लोगों का भी कल्याण ही होता है, अकल्याण किसी का नहीं। अपना कल्याण करने वाले के द्वारा किसी दूसरे का अकल्याण हो ही नहीं, और दूसरे का अकल्याण करने की भावना रखने वाले का भी कल्याण कभी नहीं हो सकता। दूसरे का बुरा सोचने वाला अपना भला कैसे करे, और अपना भला चाहने वाला दूसरे का बुरा कैसे करे? क्योंकि जब जब मैं दूसरे का बुरा करता हूं तो मेरा ही बुरा सबसे पहले होता है। ये छोटी सी चीज अगर अपने जीवन में आ जाए तो हम अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित और बहुत संतुलित और बहुत स्वस्थ बना सकते हैं। आचार्य भगवंतों ने जीवन की ऊंचाई छूने के लिए अपने जीवन को स्वाभाविक ढंग से, सहज ढंग से, अत्यंत संतुलित और स्वस्थ जीने के लिए सलाह दी। सील व्रतेषु अनति चारो है तो कठिन सा नाम, लेकिन मैंने शुरुआत यहां से की। शील के मायने होता स्वभाव, अत्यंत स्वाभाविक सहज, आर्टिफिशियल कृत्रिम जीवन जीना हमने सीख लिया। कृत्रिम जीवन यही है कि मैं साहब बन गया अब अपने कपड़े नहीं धो सकता, मैं साहब बन गया अपने कमरे में झाड़ू नहीं लगा सकता, अत्यंत अस्वाभाविक जीवन। अभी कल, उसके एक दिन पहले और उसके और 6 महीने पहले, 3 उदाहरण मेरे सामने हैं, आएंगे आपके यहां पर, शायद उनका तय भी हो गया होगा। सागर के हैं विठल भाई पटेल, नाम बहुत कम लेता हूं लेकिन आज ले रहा हूं इस अवसर पर। उन्होंने मेरे पास लेटर ये लिखा है कि जब आप यंग जन अवार्ड करें तो मुझे सिर्फ सूचना दें, मैं आऊंगा, और मेरे जुम्मे में आप पहले से काम तय करके रखें। मेरा काम है जहां बच्चे रुकेंगे वहां सफाई करने का, इसके अलावा दूसरा काम नहीं लूंगा, ये काम मेरा है। दूसरे भाई के जैन हैं, उन्होंने मेरे से काम लिया है कि बच्चे जहां जूते चप्पल उतारेंगे उनके जूते चप्पल की सुरक्षा करने की व्यवस्था मेरी। और कल एक कदम आगे बढ़ के रामगंज मंडी के मास्टर साहब ने भी कहा कि उसी में मेरा नाम लिखवाता हूं, उसी जूते चप्पल जहां उतारेंगे उनकी सुरक्षा में। ये छोटे से काम है। अरे कौन करेगा इन छोटे से कामों को? झाड़ू लगाने का मैं करूं? अगर ऐसा जीवन का सोच है तो मानिएगा जीवन अत्यंत अस्वाभाविक, अत्यंत कृत्रिम, अत्यंत औपचारिक। अगर हम अपने विनोबा ये कहा करते थे कि स्वाधीन वो है जो अपना पाखाना भी अपने हाथ से साफ कर सके, वो स्वाधीन है, नहीं तो सब पराधीन है। हाँ, आप आश्चर्य करेंगे, ये ऐसे लोग रहे। और आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं कि स्वाभाविक जीवन अत्यंत निरतिचार, निर्दोष जीवन जीना और स्वाभाविक जीवन जीना, ये तीर्थंकर की हैसियत की योग्यता हासिल करने का ढंग है। बताइए, आपन तो ये सोच रहे थे कि नहीं, व्रतों का पालन करना और निर्दोष रूप से व्रतों का पालन करना, क्योंकि शील व्रतेषु अनतिचारो, शील का मतलब होता है व्रतों की रक्षा करने वाले व्रत, और व्रतों का मतलब होता है हिंसा, झूठ, चोरी इत्यादि का त्याग। बड़ा आसान है। ये आसान कब होगा? हम कितना भी अहिंसा, सत्य, चोरी, अपरिग्रह और इन सब की चर्चा कर ले, लेकिन जीवन में एक इतनी छोटी सी चीज नहीं आई। हमारा कॉन्सेप्ट वही का वही घटिया, हमारा सोच का ढंग वही, तो फिर हम जीवन में ऊंचाई इन व्रतों को भी अंगीकार कर लेंगे तब भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि निरतिचार के मायने क्या है? निरतिचार अर्थात ऐसे व्रत और नियम का पालन करना जिससे कि दूसरे को प्रेरणा मिले। और हमारे जीवन से क्या प्रेरणा मिलेगी कि भैया जी ये तो और ही पराधीन और हो गए, समाज पे निर्भर और हो गए, जी त्यागी वृत्ति हो गए, मनो समाज पे निर्भर है, अपना काम अपने हाथ से नहीं, इनके कपड़ा धो एक आदमी जाने। क्या थोड़ा बुरा नहीं लगना चाहिए जो लोग इस तरह सोचते हो उनके लिए? मैं तो एक सोच दे रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे सोच से सहमति हो, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती। अगर आपने वस्त्र धारण कर रखे हैं तो अपने वस्त्र आपको धोना चाहिए, या तो फिर प्राकृतिक जीवन जियो, जैसे प्रकृति में आए थे निर्वस्त्र, वैसा ही जीवन जियो तो झगड़े खत्म, या तो इतना स्वाभाविक और प्रकृति प्रदत्त जीवन जिए, या फिर हमने अगर कुछ चीजें अंगीकार की हैं तो हम उनमें भी, जिस स्थान पर बैठे भैया उस स्थान को क्या साफ करने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इतना छोटा सा। लेकिन नहीं, हमारा सोच अलग ही हो गए। आचार्य भगवान इसी चीज को कह रहे हैं। हम इस बात पर थोड़ा सा विचार करें कि हम अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो जो जो अच्छाइयां हैं, जो जो अच्छे काम हैं, हम उनको अपने जीवन में स्वीकार करें, दूसरे के जीवन में हमारे जीवन से क्षति ना हो, इस बात का हम ध्यान रखें। अपने स्वाभाविक जीवन को, स्वस्थ और संतुलित जीवन को जीने से दूसरे की कभी क्षति नहीं होती। भगवान महावीर स्वामी का संदेश सब दोहराते हैं, जब कभी जुलूस निकलता है तो नारा लगाते हैं, जियो और जीने। आचार्य महाराज कहते हैं कि जियो यानी इस तरह से जियो जिससे कि दूसरे के जीने में मदद मिले, उसके जीने में मुश्किल खड़ी ना हो। लेकिन हम इस तरह जीते हैं कि दूसरे का जीना मुश्किल कर देते हैं। ऐसे जियो जिससे कि दूसरे के जीने में असुविधा ना हो, दूसरे का जीवन आसान हो, मुश्किल में ना हो। और वो है, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है जो अपने जीवन को आसान बनाता है, उसके जीवन से औरों का जीवन, जो अपने जीवन को मुश्किल में डाले है वो सबके जीवन को मुश्किल में ही डालता है। हम सोचते हैं कि दूसरे के जीवन में मुश्किल में डालने से हमारा जीवन आसान हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, मैं हमेशा दिया करता हूं, शायद मुझे याद नहीं आता मैंने आपको सुनाया था कि नहीं सुनाया था, आप याद आ जाए तो फिर से सुन लीजिएगा, और नहीं हो तो पहली बार सुना हुआ ऐसा मान लीजिएगा। वैसे मुझे लग रहा है कि सुनाया होगा। एक व्यक्ति रास्ते से चला जाता था और जिस जगह से निकलता था तो उसके ऊपर कोई व्यक्ति थूक देता था, तो वो कुछ नहीं, वो ऊपर भी नहीं देखता था, वो तो उसने पहुंचा और आगे बढ़ गया। लेकिन वो जो उस घर के नीचे एक दुकानदार था, उसने 5-7 दिन तो देखा, फिर बाद में एक दिन उस व्यक्ति को धीरे से बुलाया अपनी दुकान पर कि मामला क्या है, ये तुम्हारे ऊपर ये ऊपर वाले लोग थूकते क्यों? तो उसने कहा मैं क्या जानू, परेशानी उनकी है वे जाने। बड़ा अजीब जवाब, अपनी परेशानी उनकी है वो जाने। अरे बोले तुम्हारे ऊपर थूकते तुम्हें कोई परेशानी नहीं? बोले नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं तो उनकी परेशानी सोच सोच के हैरान हूं, मुझे तो सिर्फ पहुंचा और आगे बढ़ गया, लेकिन उनको तो मैं कब निकलूंगा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज सबसे बड़ी, दूसरी चीज फिर थूकने का मन बनाना पड़ेगा और बहुत सारा थूक इकट्ठा करना पड़ेगा, और इतने ही नहीं पूरा एंगल मिलाकर थूकना पड़ेगा, नहीं तो कहीं और गिर जाए मेरे ऊपर लगे। परेशानी तो उनकी, मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे तो सिर्फ पहुंचना और आगे बढ़ना। ये उदाहरण किस बात की सूचना देता है कि दूसरे के जीवन को मुश्किल में डालते हम अपने जीवन को ही मुश्किल में डालते हैं। स्वाभाविक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के मायने हैं अपने जीवन से दूसरे को क्षति न पहुंचे, इस बात की हमेशा जागृति बनी रहे। मैं जीवन ऐसे जीऊं, शील यानी स्वभाव और व्रत यानी मेरे जीवन को संतुलित बनाने की प्रक्रिया। हम लोग शील के मायने कुछ और लेते हैं, व्रत के मायने कुछ और लेते हैं, यहां दूसरा ही अर्थ है। शील के मायने हैं अत्यंत स्वाभाविक जीवन, अत्यंत पवित्र और निर्दोष जीवन जीना, सबके प्रति सद्भाव है, किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना या कि वासना कामना नहीं है, ऐसा जीवन जिसको हम कहते हैं कि ब्रह्ममय होकर के जीना, वैसा जीवन। इसलिए शील को कहीं कहीं ब्रह्मचर्य भी कहा है। पांचों इंद्रिय और मन की तरफ जब हमारा जीवन चला जाता है वो हमारे जीवन की स्वाभाविक स्थिति नहीं, वो हमारी पराधीनता है, वो कृत्रिम जीवन है। जब हम अपने पांचों इंद्रियों और मन के पोषण के लिए निरंतर सुबह से शाम तक प्रयत्न करते हैं और अगर हम उनकी ग्रिप में रहे आते हैं पांच इंद्रिय और मन के, तो फिर बताइएगा दूसरे की ग्रिप में रह के जो जीवन जिएगा वो क्या स्वाभाविक जीवन जी पाएगा? और स्वाभाविक जीवन कब जी पाएंगे हम? जब जितनी ज्यादा हमारी अपनी स्वाधीनता होगी, जितनी कम ग्रिप हमारे ऊपर अपने इंद्रिय और मन की। इंद्रियां हमारा कोई ज्यादा बिगाड़ नहीं करती, करता सबसे ज्यादा मन है। कभी भी आंख ने ये नहीं कहा कि फलानी चीज देखो, भीतर बैठा मन कहता कि देखो। कभी जिब्भा ने ये नहीं कहा कि लाओ मुझे कोई बढ़िया बढ़िया सी चीज, नहीं, मन कहता है कि खा लो।
मन को संतुलित, स्वस्थ और नियंत्रित बनाए रखने की प्रक्रिया है शील और व्रतों के पालन करने की। और निर्दोष के मायने सिर्फ ये है कि मैं इस तरह से अपने शील और व्रतों का पालन करूं जिससे कि दूसरे को मैसेज मिले, प्रॉपर मैसेज मिले। रावण अपने व्रतों के पालन करने में बहुत दृढ़ निश्चयी था। उसने एक व्रत लिया था मुनि महाराज से कि जो मुझे नहीं चाहेगा मैं उसके साथ में संबंध स्थापित नहीं करूंगा। जब तक कि उसे अपने रूप पर बहुत अभिमान था कि मुझे कोई कैसे नहीं चाहेगा, मुझे तो सब चाहेंगे। लेकिन जब सीता जी के मामले में उसने एक दूरी मेंटेन करके रखी कि जब तक सामने वाला स्वीकृति नहीं देगा तब तक मैं आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा, ये तो दृढ़ निश्चय था। लेकिन ऐसे व्रती व्यक्ति की भी प्रशंसा क्यों नहीं हुई भैया? कोई नहीं प्रशंसा करता उसकी कि उसने इतना बढ़िया व्रत किया, ज्ञानवान बहुत था। लेकिन कषाय ने उसके जीवन के व्रतों को सदोष बना दिया। कौन सी कषाय? एकमात्र अभिमान, अहंकार। तो निर्दोष व्रतों का पालन करने का अर्थ क्या है? मैं कषायों को मंद रखूं और अपने व्रतों का पालन। कषायवान व्यक्ति व्रती हो नहीं सकता, और व्रती हो गए और कषाय करे तो व्रत खुद के नहीं टिकते और दूसरों को व्रत लेने की इच्छा जागृत नहीं। इसलिए शील और व्रत का पालन करने वाला इस बात की सावधानी रखे कि वो अपने अपने व्रतों को और अपने स्वाभाविक जीवन को इस तरह से जिए जिससे दूसरे को भी वैसा जीने की प्रेरणा मिले। ऐसा ना हो कि उसके जीवन से और ऐसा मैसेज मिले कि लोग व्रत और नियम लेने से दूर हटने लगे। आज वर्तमान में देखने में ये आता भी है कि अपन व्रत और नियमों का पालन करते हैं लेकिन इस तरह करते हैं कि दूसरे को बहुत मुश्किल में डाल करके अपने व्रत और नियम का पालन करते हैं, जबकि इतना सहज और स्वाभाविक होना चाहिए कि दूसरा और उत्साहित हो कि अरे वाह, इनका लाइफ स्टाइल, इनके जीने का ढंग, ये तो बड़ा अनुशासित और बड़ा व्यवस्थित है, बड़ा संतुलित है और स्वस्थ जीवन जीते हैं ये, मुझे भी ऐसी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। द्वीपायन मुनि महाराज थे, भारी तपस्या, लेकिन उनकी प्रशंसा नहीं की जाती उनकी तपस्या की। हमेशा ये कहा जाता है कि देखो सहन नहीं हो पाया तो क्रोध कर लिया और द्वारका नष्ट हो गई। बताइए, इसलिए लिखना पड़ा कि शील व्रतेषु अनतिचारो, शील और व्रतों के पालन में निर्दोषता बनी रहे। हम शील और व्रत का अर्थ बहुत सहज रूप से समझें। व्रत के मायने तो हैं पापों से बचना और शील के मायने हैं अपनी कषायों को मंद रख करके स्वाभाविक जीवन जीना। इतना ही अर्थ है और कोई बहुत कठिन सी चीज नहीं है। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, क्यों करना, क्यों खाना, खाने पीने पे लगा लो। क्या करना, कब करना, कैसे करना, क्यों करना, क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, क्यों बोलना। कितनी चीजें मिली अपन को? तीन तो मिली, वाणी, मन, शरीर। सोचना और लगा लो, क्या सोचना, कैसे सोचना, कब सोचना, क्यों सोचना। सब पर, तीनों पर ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये चार चीजें हमारे मन, वाणी और शरीर को अगर अनुशासित कर देवें तो जीवन अत्यंत स्वाभाविक होगा। ये विचार हमारे मन में आ जाए, मैं दूसरे के बारे में सोच रहा हूं तो क्या सोचना चाहिए मुझे, मुझे उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, मुझे बुरा क्यों सोचना चाहिए दूसरे के बारे में, अच्छा तो कब सोचना चाहिए, हर स्थिति में, ऐसे थोड़ी कि सुबह उसके बारे में अच्छा सोचूं, शाम होते होते उसके बारे में बुरा सोचूं, नहीं ऐसा नहीं, मैं तो हमेशा पूरे जीवन भर, हाँ जीवन भर कैसे सोचना चाहिए, कैसे, ऐसे कि जिससे उसका कल्याण हो, भलाई के बारे में उसका सोचें। क्यों सोचना चाहिए? इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि ऐसा सोचने से मेरा ही भला होता है। हो गया काम? उत्तर, अब खाने पीने पर लगा दो, ये जरा कठिन हो जाएगा, है ना? नहीं, आज तो ये ज्यादा आसान हो गया, खाने पीने पर तो आसानी से लग जाएगा, लेकिन सोचने पर और बोलने पर, क्या बोलना, चाहे जो कैसे बोलना ताकि बाद में सोचना ना पड़े, ऐसे बोलना बहुत कठिन है। इसमें तो मैं भी फेल हो जाता हूं, बाद में सोचता हूं फेल हो जाते हैं, क्यों नहीं। अभी अपन साधना कर रहे हैं, कोई भगवान थोड़ी बन गए हैं। साधना करने वाले को तो गलतियां होंगी उससे, लेकिन उन गलतियों को वो समझने लगा है कि ये गलती हो गई, मुझे इस बात को ऐसे ना कह के ऐसे कहना चाहिए था, सुधारो अगली बार के लिए। तो कैसे बोलना और कब बोलना, आवश्यक होने पर या अनावश्यक रूप से अनर्गल बकवास करते रहना, गोशिप नहीं। मुझे वाणी की सामर्थ्य मिली हुई है तो मैं सदुपयोग करूंगा, इसलिए सदुपयोग के लिए मैंने ये चार प्रश्न। और क्यों बोलना, कल्याण के लिए बोलना, अकल्याण वाली भाषा ही नहीं बोलना। ये हो गया। खाने पीने पर लगा लें, क्या खाना, चाहे जो जो मिल जाए वो खाना। आलू मिल जाए तो आलू खा लेना, प्याज मिल जाए तो प्याज मिल जाए तो प्याज खा लेना, खाने योग्य नहीं हो तो भी खा लेना, जिसको गाय भी सूंघ करके और एक तरफ मुंह कर ले उसको भी खा लेना। मालूम वो कौन सी चीज है, आप अंडा रख दो गाय के सामने, सूंघ के वापस इधर मुंह कर लेगी कि ये खाने की चीज नहीं बाबा, हटाओ यहां से सामने से। आदमी के सामने रख दो, कुछ नहीं सोचता। बताइएगा, हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाह रहे हैं और उतनी ऊंचाई छूना चाह रहे हैं जो भगवान ने छुई है, कैसे काम चलेगा। क्या खाना, इसका विवेक नहीं हमारे लिए। जो खाने योग्य है, और खाने योग्य क्या है, जिसमें किसी जीव का घात नहीं होता, वो खाने योग्य। आप फल फूल खाते हैं, उसमें तो होता है, फल फूल में जीवन होने के बाद भी उसमें रक्त और मांस नहीं होता, क्योंकि रक्त और मांस के आश्रित अनंत अनंत जीव राशि होती है, और जहां सिर्फ एकमात्र धातु है रस रूप में वनस्पति में, वहां पर जीव अपना जीवन पूरा करके और दूसरे अन्यत्र चला जाता है। और एक फल तोड़ लेने से वृक्ष का कुछ घाटा नहीं होता, और अगर किसी का फल पक जाने पर फल तोड़ लिया, ऐसे ही नाक पक जाने पर नाक तोड़ लो दूसरे की, कान पक गया तो कान तो ऐसे होता है क्या, नहीं होता बाबा। फल पकने पर फल तोड़ के खाया जाता, ऐसे नहीं खाई जाती ये चीज है। ऐसे ऐसे सोचे जरा, अपन में से कोई भी यहां जो बैठे वो कहेंगे अरे ये तो बहुत इरेलीवेंट सी बात है, हम लोग कहां कोई मांसाहारी थोड़ी है। लेकिन भैया इनडायरेक्ट कितना आ रहा है घर में, कभी विचार किया, कभी डिब्बा बंद चीजों के खरीदने से पहले विचार किया कि क्या है इसमें, नहीं मालूम तो कैसे खा रहे हो। पहले मालूम करेंगे कि क्या क्या है इसमें भीतर मिला हुआ। ऊपर तो लिखा है कॉर्नफ्लेक्स, मक्के का आटा, कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड इज नथिंग बट ए पेस्ट ऑफ एग इन द मिल्क। परिभाषा पढ़ो कस्टर्ड की, डिक्शनरी में 1842 की ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अंडे को फैट करके दूध में जो बनाया जाता वो कस्टर्ड, और जितने ये दुकानों में कस्टर्ड मिलते हैं उसमें 80% होता मक्के का आटा और 20% होता यही मामला, तब तो बनता कस्टर्ड। नहीं तो अपने घर में पीस के रख लो ना मट्टे मक्के का आटा, उसको मिलाओ ना, अगर प्योर मक्के का आटा ही है वो तो नहीं। कस्टर्ड में कारस्तानी भी है साथ में, जितने अमूल वाले दूध बेच रहे हैं उसमें विटामिन ए के लिए क्या मिलाना पड़ रहा है, कॉड लीवर ऑयल के अलावा कुछ नहीं मिलता। मछली का तेल विटामिन ए के नाम पर, टैबलेट में ही मछली का तेल आता विटामिन ए के नाम पर, जो टॉनिक लिखे जाते हैं हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन डेक्सोरेंज, वो क्या चीज है, कभी विचार किया। वो सीधा सीधा देवनार के कदल खाने का ब्लड है, 98% उसमें 2% प्रिजर्वेटिव है, अल्कोहल है, और बाकी तो पूरा का पूरा है, लेकिन कभी नहीं करते विचार। अभी और बड़ी छोटी छोटी चीजें छोड़ो कि हमने आलू छोड़ दी, हमने प्याज छोड़ दी, बाबा ये छोड़ो, पहले पहले होटल का खाना छोड़ो फिर रात में खाना छोड़ना, मैं तो ये कहता हूं। रात्रि भोजन का त्याग बहुत अनिवार्य है, वो तो अपन देखेंगे अभी। कि पहले तो ये विचार कर लें कि क्या खाना, खाने योग्य क्या क्या है भक्ष्य पदार्थ, जिसमें बहुत जीवों का घात होता हो, जिससे हमारा जीवन मुश्किल में पड़ता हो, प्रमाद आता हो, जिसमें त्रस जीवों का घात होता हो, बहुत एक इंद्री जीवों का घात होता हो, जो सज्जन पुरुषों के योग नहीं है खाने के। कोई किसी का उबाल खाता है क्या? नहीं खाता। लेकिन कई लोग जो है इस तरह की चीजें खाने की प्रेरणा देते हैं। आज स्वमूत्र बताइएगा सज्जन पुरुषों के लिए भक्षणी नहीं है, अनुक्षेप है, अभक्ष्य। ऐसे पांच प्रकार के अभक्ष और 22 अभक्ष की चर्चा आचार्य भगवंतों ने की है। तो क्या खाना, इसका विचार तो करें हम। और कब खाना? 24 घंटे, जब चाहे जब। पशु पक्षी भी भैया रात में नहीं खाते। कब खाना इसका विचार तो करना चाहिए। आज जब अपन सील और व्रतों के निर्दोष पालन की बात कर रहे हैं, तब भोजन तो करना है जीवन में, उसके बिना जीवन नहीं चलता है। लेकिन कब? सूरज आकर के हमारे चौके का दरवाजा खोले और जाने लगे तो बंद करके जाए, ये सूरज का काम। और सूरज के काम को हमें करना पड़ेगा कि जैसे ही तुम आओगे मैं दरवाजा खोलूंगा, तब घुसूंगा कमरे चौके के अंदर, और जैसे ही तुम विदा लोगे हमसे हम बंद कर देंगे, बस इतनी देर तक ही चौके में रहूंगा। चौका मतलब जहां चार बातों का ध्यान रखा जाए, यही चार बातें कि क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, क्यों खाना, ये चौका। और किचन जहां हमेशा किचकिच मची रहे 24 घंटे, वो किचन और क्या उसमें, तो वो चौके से कन्वर्ट हो गया, वो किचन हो गया, नहीं चौका। कब खाना? जब तक सूर्य का प्रकाश है तब तक खाना। बड़ा साइंटिफिक भी है, अल्ट्रावायलेट रेज जब तक रहती है तब तक वातावरण में जीवराशि अत्यंत अल्प होती है, और जैसे ही सूर्य की किरणें विदा लेती हैं अपन से, और फिर देखिए कितनी जीवराशि उत्पन्न होना शुरू होती है। वो सब हमारे लिए दिखने और नहीं दिखने वाली सब कंटामिनेशन हो चाहे भोजन के साथ, तो कम से कम इतना विवेक तो हम रखें। और फिर कहते कि कैसे खाना, खड़े खड़े खा लेना। मुनि महाराज के लिए छोड़ करके, नहीं तो आप गड़बड़ में पड़ जाएंगे। खड़े होकर के तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसने की प्रकृति प्रदस्त भेष धारण कर लिया है, वही खड़े होके, क्योंकि वो अतिथि भाव से खाएगा। वो दूसरे के दरवाजे पर पहुंचा है, भिक्षा खड़े होकर के ली जाती है, मेहमानी करने नहीं गए हैं कि बैठ करके टिक करके आराम से पंखा चलवा करके फिर भोजन करेंगे, वहां कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन जूते चप्पल पहने हुए और खड़े खड़े हाथ में प्लेट लिए, या तो दो ही हाथ से खाओ ना, खड़े खड़े खाना तो फिर हाँ एक हाथ में प्लेट लेके एक हाथ से नहीं खाना, फिर खड़े खड़े अगर खाना है फिर दो ही, फिर खड़े होके खाना, फिर दो ही हाथ से खाओगे, और ये उतारना पड़ेगा खड़े होके खाने वाले को, तो सब उतार के एक तरफ रखना पड़ेगा, फिर वैसा कर लो। अगर खड़े होके ही खाना, वैसे बहुत अच्छी चीज है आप खड़े होके खाना पसंद करें, लेकिन ये जो हमने अपना रखा है कैसे खाना। हमारे यहां तो खाने का मंत्र हुआ करता था, आज भी आदर्श विद्या मंदिर या की जो सरस्वती शिशु मंदिर है उनमें आज भी भोजन का मंत्र बच्चों को, छोटे बच्चों को दिया जाता है। ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय मूल के धर्म हैं। इससे विभिन्न जो धर्म हैं जिनमें हम कॉन्वेंट में भेज रहे हैं वहां तो ये सिखाया जाता, वहां हाथ जोड़ना नहीं सिखाया जाता। मैं एक बार और कह चुका हूं, आज भी यही बात कह रहा हूं, क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति इस पर निर्भर होती कि कैसे खाना, बैठ करके अत्यंत शांत भाव से भगवान का स्मरण करके, पवित्रता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, परोसने वाला भी प्रसन्न है और ग्रहण करने वाला भी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर रहा है। लेकिन आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, लेकिन मेरे जीवन की शुद्धि के लिए मैं आहार को पूरे शुद्ध तरीके से करता हूं, ये कैसे करना। हमारा तो घर चौका होटल तक पहुंच गया, अब चौका नहीं रहा, चौका होटल तक पहुंच गया हमारा। कैसे खाना, बहुत सावधानी पूर्वक खाना, और क्यों खाना, काहे के लिए खा रहे, जब तप ज्ञान ध्यान और परोपकार की भावना से खाना। सिर्फ खाने के लिए खाना ये नहीं है। खाने के लिए खाना खाने वाले चाइना के एक राजा हुए, उनके बारे में आता है कि वो बढ़िया बढ़िया चीजें खाने की उनकी आदत थी, लेकिन अब खाली तो पेट भर गया और नहीं खाई जा रही, तो मालूम फिर उनके डॉक्टर लगे थे, वो उनको उल्टी करवाते थे ताकि फिर बाहर निकल जाए, फिर से खा सके, मर गए वो इसी में। सच्ची सच्ची घटना सुना रहा हूं, ऐसे बुद्धू नहीं बना रहा हूं, पढ़ा था मैंने कहीं पर, पढ़ा था हमने। इतनी आसक्ति इतनी मूर्छा अभी हो सकती है कि क्यों खाना, सिर्फ खाने के टेस्ट के लिए। तो आज खाने के लिए टेस्ट के लिए तो खा रहे हैं, कौन खिला रहा है बादाम किसी अपने बच्चे के लिए कि होशियार हो जाओगे पढ़ने में, नहीं पी लो चाय खा लो ब्रेड और बिस्कुट लिए था ज्यादा हुए तो उनमें धरो का है। कहने के लिए प्रोटीन एक्स के बिस्किट हैं, लेकिन उसमें है क्या प्रोटीन, है क्या जितना रिच प्रोटीन हमारे फल फूल और ड्राई फ्रूट्स में। लेकिन इसकी आदत ही खत्म हो गई, अब तो वही है इंटरनेशनल ड्रिंक इंटरनेशनल वेज। हमारे साहब थे दुर्गे साहब, एक ही पेट्रोलॉजी के प्रोफेसर, वो हम लोगों को उनके रूम पर गए तो बोले कि तुम लोग का दिमाग कमजोर इसलिए हो गया क्योंकि तुम लोग इंटरनेशनल ड्रिंक करता और इंटरनेशनल वेज खाता। हम लोगों ने कहा हम लोग ऐसा खाता पीता कुछ भी नहीं, वो उधर के थे तो वो खाता पीता ऐसे बोलते थे, इंग्लिश वाला था तो हिंदी उनको बोलने में मुश्किल होती थी। हमने कहा ये समझ में नहीं आता, ड्रिंक विंक तो हम लोग करते नहीं और आप कह रहे कि इंटरनेशनल ड्रिंक करता। तो बोले इंटरनेशनल ड्रिंक मतलब टी चाय, अंतर्राष्ट्रीय पेय है, सब पी रहे, और इंटरनेशनल वेज आलू। तो बोले तुम लोग चाय पीता आलू खाता इसलिए बुद्धि काम नहीं करता। और वो स्वयं मैंने देखा उनको दो तीन ड्रेस से ज्यादा नहीं थे उनके पास, प्रोफेसर होने के बाद भी साइकिल से आते थे अपने हाथ से हवा भरना, लेकिन ब्रिलियंट इतने कि अपने विषय को संस्कृत में पढ़ना चाहो तो संस्कृत में, इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इंग्लिश में, हिंदी में तो हिंदी में, सबसे पहले आके वो ही कहते थे कि किस भाषा में पढ़ना चाहोगे, तीनों भाषा में कमांड। मैं इसलिए कह रहा हूं कि खाने पीने का भी असर पड़ता हमारे ऊपर, जैसा हम हमारे हमारे पूरे जीवन जीने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हमारे जीवन को, मैंने इस चीज को कभी आपसे छेड़ा नहीं, पर मेरा मन हुआ आज कि हम जब अपने जीवन को संतुलित स्वस्थ और स्वाभाविक जीवन बनाना चाह रहे हैं, शील और व्रत का पालन करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही कि मैं अपने जीवन को बहुत स्वाभाविक ढंग से जीऊं, उन चीजों को ही ग्रहण करूं जिससे दूसरे की क्षति ना हो, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए दूसरे के जीवन को बर्बाद न करूं। हम अपने भोजन के लिए कितने जीवों को नष्ट करते हैं कभी हमने विचार ही नहीं किया, हम अपने सुख सुविधा के साधन इकट्ठे करने के लिए कितने जीवों की क्षति करते हैं ये हमने कभी विचार ही नहीं किया, हमें इस बात का भी विचार करें तब हमारा जीवन अत्यंत स्वाभाविक होगा। और आखिरी बात कि अपने जीवन को अपने जीवन की प्रक्रिया को अत्यंत निर्दोष बनाने का मतलब है कि सबके साथ सद्भाव से जीना, अत्यंत प्रेम पूर्ण व्यवहार रखना। त्यागी वृत्ति का तो और बड़ा दायित्व है क्योंकि जिसने अपने जीवन को स्वाभाविक रूप से जीना शुरू किया है, अत्यंत संयमित और अनुशासित होकर के जीना शुरू किया है, उसके जीवन से तो निरंतर प्रेम और वात्सल्य ही झरना चाहिए। अत्यंत उदार दृष्टिकोण और विशाल दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि और व्यक्ति भी ये प्रेरणा ले सके कि मुझे भी ऐसा ही व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीना चाहिए। एक थानेदार था तो वो कभी भी किसी भी साधु सज्जन को दानवान नहीं देता था। उसके घर पर कोई बाबा साधु मांगने आ जाए तो उसे दुत्कार देता था। उसकी जीवन साथी का बहुत मन होता था कि दे दें, बाबा आए हैं साधु आए हैं दे दें, लेकिन डर बहुत था थानेदार का, थानेदार से तो और लोग डरते हैं, तो फिर थानेदार के घर के लोग तो थानेदार से डरेंगे, नहीं डरेंगे क्या? तो एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा मांगने के लिए आ गए और उस दरवाजे पर मांगने के लिए आए थे और घर से उन्होंने माँ ने सोचा कि अभी तो है नहीं थानेदार, दे दो। जैसे ही वो देने के लिए आई उतने में थानेदार आ गए। अब वो भाग करके भीतर बिना दिए चली गई। थानेदार ने कहा कि ये बाबा क्या चाहिए? तो बोलते तुम जो दे दोगे वो ले लूंगा, विनयपूर्ण व्यवहार है। तो उठा करके मालूम क्या किया, घर में जो पोंछा लगाने का कपड़ा था ना वो पड़ा हुआ था, ये ले ले, और उनके कटोरे में वो पोंछा का कपड़ा डाल दी। बाबा जी ने बहुत सहज रूप से ग्रहण कर लिया। अहो भाग, कभी किसी को कुछ नहीं दिया, कम से कम कुछ दिया तो है। ऐसा बहुत कठिन है भैया, मैं तो किस्से कहानी में सुनाता हूं उसी में अच्छा लगता, जीवन में तो बहुत कठिन है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि वो थानेदार रोज इतना जरूर था कि शाम को भगवान की आरती करने जाता था। तो मंदिर में पहुंचा, उसने देखा वहां भी वो बाबा बैठा हुआ है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो बाबा अपने हाथ में एक दीपक लिए है और दीपक में रुई की बाती की जगह कपड़े की बाती है। उस बाबा ने वो जो कपड़ा उसको दिया था उसको धो करके उसकी बातियां बना ली भगवान की आरती करने के, और उसी में से एक बाती। और प्रार्थना क्या कर रहा है, पीछे थानेदार खड़ा हुआ सुन रहा है भगवान से। वो प्रार्थना क्या कर रहा कि भगवान आज ऐसा दाता मिला कि आपकी आरती उतारने के लिए उसने मुझे कपड़ा दिया, उसी की मैं बाती बनाकर आपकी आरती कर रहा हूं। हे भगवान उसे सद्बुद्धि देना, उसके जीवन में ऐसी ही ज्योति भरना जैसी कि उसने मुझे ये कपड़ा भेंट करके तुम्हारी आरती की ज्योति जलाने के लिए कहा। भगवान उसके जीवन में ऐसी ही ज्योति जला। आप बताइए, ऐसा कोई जीवन जीने वाला ये हमारे जीवन को प्रेरणा देता है कि अगर हमने वाकई में अपने जीवन को अत्यंत स्वाभाविक और सहज जीना शुरू किया है तो कोई हमें दुत्कार भी दे तब भी हम उसमें से जो श्रेष्ठ है वही निकाल लेंगे, तब भी हम उसमें उसके प्रति सद्भाव ही रखेंगे। ऐसा जीवन तो जीने वाला ही अपने जीवन को और अपने आसपास के परिवेश को बहुत ऊंचा उठा सकता है, इसी भावना के साथ कि अपन अपने जीवन को तो व्यवस्थित बनाए ही अपने आसपास के परिवेश को भी ऐसा ही अच्छा और उज्जवल बनाने के लिए प्रयत्न करते रहें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक है, नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नर